أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیز محترم، انسان اپنے معاشرے میں بہت سارے حادثات واقعات کو رونما ہوئے دیکھتا ہے، جو وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے اثرات کو انسانوں پر مرتب کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے انسان ان واقعات سے سرسری انداز سے گزر جاتے ہیں، بہت سے انسان دیکھتے ہیں، رکتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور بہت سے انسان ان پر غور و خوض کرتے ہیں، ان کے علل و اسباب پر، یہ واقعہ کیوں، کس لیے، کب اور کیسے رونما ہوا. ہماری زندگی واقعات سے بھری پڑی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ یا واقعات ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، وقوع پذیر ہو رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں. کامیاب انسان وہ ہے جو ان واقعات کو دیکھے، سمجھے، غور و خوض کرے اور ان کے علل و اسباب کے بارے میں انالائز و تجزیہ کرے. کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسائل کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں. حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی دامت برکاتہو کے بیانات مشتمل ایک کتاب ہے جس کا نام ہے روش تحلیل سیاسی، یعنی سیاسی اور اجتماعی مسائل کی روش کیا ہونی چاہیے تحلیل کرنے کی. روش تحلیل سیاسی، کہ سیاسی واقعات، اجتماعی واقعات، معاشرتی واقعات کو تجزیہ و تحلیل کرنے کی صلاحیت کیا ہونی چاہیے. اور اس سیاسی تحلیل کو آج کے اجتماعی و معاشرتی علوم میں ایک اہمیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے آج تمام واقعات کو اسی علم کی نگاہ سے دیکھا اور تولا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر انسان میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے اطراف میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں غور و خوض سے کام لے، تو وہ چوٹ کھاتا ہے، گر جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قومیں اور معاشرے اسی وقت کامیاب ہوتے ہیں کہ جب ان میں یہ تحلیل اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. اگر یہ صلاحیت ان میں نہ ہو تو نہ صرف کہ وہ خود بھی شکست کھاتے ہیں، بلکہ ایک مکتب کی، گروہ کی شکست کا بھی سبب بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام خامنئی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں اجتماعی اور سیاسی مسائل کا تجزیہ اور تحلیل کرنے کی قدرت موجود نہ ہو تو وہ فریب اور شکست سے دوچار ہوگی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں اکثریت ایسی تھی کہ جن میں تجزیہ اور تحلیل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. امیر المومنین کے بھی اصحاب میں کچھ ایسے افراد تھے، یعنی ایک گروہ ایسا تھا کہ جن میں تجزیہ و تحلیل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود بھی نقصان سے دوچار ہوئے، اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کو بھی نقصان سے اور شکست سے دوچار کیا. خوارج آپ نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک نئی فکر کا فروغ دیا. امام حسن کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ امام حسن کو صلاح پہ مجبور کیا گیا. یہ سب اس وجہ سے کہ انسان تجزیہ و تحلیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اسی وجہ سے رہبر معظم کے ارشادات اور بیانات مشتمل ایک کتاب تدوین کی گئی جس کا نام ہے روش تحلیل سیاسی، کہ سیاسی اور اجتماعی مسائل کا تجزیہ اور تحلیل کرنے کی کیا روش ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی منفرد موضوع ہے کہ جس پر بہت کم کام ہوا ہے کہ اجتماعی مسائل کو کس نگاہ سے دیکھا جائے. تاریخ ہمارے سامنے ہے، تاریخ قریب بھی ہمارے پاس ہے، تاریخ بعید بھی ہمارے پاس ہے، لیکن کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جو ان واقعات میں تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں اور پھر کچھ اصول اس کر کے ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ممکنہ خطرات سے بچاتے ہیں. इस बिना पर जितना जितना ज़माना बढ़ता जा रहा है, ज़राए अबलाग और मीडिया के वसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, इस तजो तहलील को एक मरकज़ी हैसियत हासिल होती जा रही है। और मैंने अर्ज़ किया कि कामयाब लोग कामयाब कौम हुई थे जिनमें तजिया और तहलील करने की सलाहियत होती है। इस्लाम ने हमें तजिया और तहलील करने पर जोर दिया है, ताकीद की है। कुरान करीम और रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम इस बात पर शाहिद हैं कि इस्लाम एक ऐसे इंसान की तरबियत चाहता है कि जो दर हकीकत अपने ज़माने से आगाह हो, जानता हो, बेदार हो, अपडेट हो। हज़रत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल आलिमु बे ज़मानी ला तहजुमु अलैहि लवाबिस। अल आलिमु बे ज़मानी, अपने ज़माने का आलिम, अपने ज़माने के नशेबो फराज़ का इल्म रखने वाला इंसान। आलिम से मुराद एक सादा सा इंसान नहीं है जिसने गूगल मालूमात या चंद डिग्रियों के साथ मसलन किसी ओहदे को हासिल कर लिया या फारो तहसील हो गया। अल आलिम यानी इल्म रखने वाला, यानी शऊर रखने वाला, ने तजो तहलील की सलाहियत का हामिल इंसान। पस इस बना पर अल आलिम बे ज़मान ही, अपने ज़माने का आलिम इंसान, जानने वाला इंसान, यानी उसमें सलाहियत मौजूद हो कि वो तजो तहलील कर सके, एनालाइज कर सके। ला ताजुम वापस, उसका नतीजा क्या होगा? ऐसा इंसान जो इल्म रखता है अपने ज़माने का, उस पर ज़माना हजूम नहीं करता, ज़माना हमला नहीं करता, वो पहले से तैयारी करता है। उसमें सलाहियत होती है कि माजी के हालात वाक़ियात को देखते हुए मुस्तकबिल में मुमकिन पेश आने वाले वाक़ियात की पेश बीनी करे, उनके बारे में बताए, खुद खुद आगाह हो और ख़ुद को तैयार करे ताकि उन आने वाले हालात के जो वक़ू पज़ीर होने वाले मुस्तकबिल में उनके ख़तरात से और नुकसान से ख़ुद को महफूज रख सके। लिहाजा आज की दुनिया में आप देखें कि इस एनालाइज को एक बहुत मरकज़ी हैसियत हासिल है, और ये एनालाइज अगर ना हो और सिर्फ ख़बर हो तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। यही वजह है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वला यहमिलु हादल अलम अहलुलबसर वसब्र। यानी इस अलम को दुनिया में अगर कोई इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सही ज़ुहूर की जानेब हरकत करना चाहता है, सही ज़ुहूर से मुराद ये कि यानी दो कस्म के ज़ुहूर मुराद हैं। एक वो ज़ुहूर कि जिसमें हमारा कोई काम नहीं है, हम बैठ के दुआ कर रहे हैं। एक ज़ुहूर जिसमें हम शरीक हैं, शराकत दार हैं और दुआ कर रहे हैं ज़मीन तवर, यानी वो मुराद है यहाँ पर कि जो सही ज़ुहूर की तरफ हरकत कर रहा है, अपनी तो ज़िम्मेदारी को अदा करते हुए हरकत कर रहा है, इसने एक परचम उठाया हुआ है। वला यहमिलु हादल अलम इल्ला अहलुल बसर व सब्र। इस अलम को कोई नहीं उठा सकता सिवाय दो इंसानों के, एक कि जिसमें बसारत मौजूद हो, बसीरत मौजूद हो, रोशनाई मौजूद हो, अक्ल की रोशनाई, कल्ब की रोशनाई, हक व बातिल में तमीज़ की रोशनाई, यजअल्लकुम फुरकाना जिसको कुरान ने कहा है, वो सलाहियत उसके पास होनी चाहिए। और वह सब्र, और सब्र यानी इस्तकामत। जब आपको पता है कि ये मुश्किल हैं तो उस पर आपने सब्र करना है, इस्तकामत करनी है, डट जाना है। तो ये दो चीज़ें हैं कि जो इस ज़माने में मुंतज़र इंसान के लिए ज़रूरी है। और ये जो हम बहस कर रहे हैं कि इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने ज़माने में मुसलसल देख रहे हैं कि हालात तो वाक़ियात रुनुमा हो रहे हैं, लेकिन हम उससे दर हकीकत वो नतीजा अख्ज़ नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए। यानी नवशते दीवार लिखा है लेकिन पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी की वजह यह है कि इन 40 सालों से ज़्यादा जो अरसा बीत गया, इसमें इस्लामी इनकलाब ने दर हकीकत इस तजिया व तहलील की सलाहियत को कमाल तक पहुँचाया है। ये किताब दर हकीकत आप तमाम नाजरीन और सामईन के लिए, या वो जो हजरात बाद में किताब पढ़ेंगे उनके लिए राहगोशा साबित होगी। इसमें कुछ ऐसे टूल्स को और ऐसी रविशों को बयान किया गया है कि जिसके बाद इंसान में सलाहियत पैदा होती है कि वो हालात व वाक़यात का तजिया करे। लिहाजा आप जब ये देखेंगे कि इस किताब में दर हकीकत एक एक नए और अछूते अंदाज से जो है वो बहस की गई। मैं इस किताब का एक छोटा सा तारुफ करा दूँ, फिर हम असल बहस में वारिद होंगे। सबसे पहले तो ये कि हमारे जवानों को क्यों ज़रूरत है इस्लामी इनकलाब के बाद तजिया और तहलील करने की, क्या क्यों ज़रूरत है, और फिर उसके लवाजमात हैं उसको बयान किया गया है। किताब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में कुछ मुकदमात को बयान किया गया है, वो मुकदमात लाजमी हैं बहस में दाखिल होने से पहले। यानी मैं किसी मसले की तजिया तहलील करना चाहता हूँ, मैं मुकदमात को फराहम करूँ, मुकदमात फराहम होंगे तो मुझे बहस में समझ वारिद होना, दाखिल होना, समझना, एनालाइज करना आसान हो जाएगा। और ये मुकदमात जो हैं वो सात मुकदमात हैं, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। पहली चीज़ क्या है कि आप इस कायनात का स्टडी करें, इस कायनात की स्टडी करें कि कायनात क्या है। ये जहान बीनी इलाही है या इलाही और खुदाई आइडियोलॉजी है कि जो इस कायनात के बारे में मौजूद है। दूसरी चीज़, दूसरा मुकदमा, अपने ज़माने की पेचीदगियों को, बारीकियों को इंसान समझे कि ज़माना कितना तेज़ है, होशियार है, बारीक है, पेचीदा है, कहीं सख्त है, कहाँ पे जो है मुश्किलात का शिकार है। तीसरा मुकदमा जो बहस में दाखिल होने से पहले ज़रूरी है वो ये है कि दीनी और तारीख़ी लिहाज से इंसान अपने आप को अपडेट करे, इल्म हासिल करे, कस्ब फैज़ करे, कस्ब इल्म करे, आगाही और शऊर लेकर आए। इसमें तीन मुकदमात हैं, यानी तीन इसके नुकात हैं। एक ये कि क़ुरान और अदिया से, क़ुरान और दुआओं से, क़ुरान और रवायात में गौर खौस करने से, उनके मतालब में सोचने से इंसान अपनी मारफत में गहराई और मजबूती अदा करे। दूसरा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का दकीक मुतालिया करे। और तीसरा ये कि तारीख़ मासिर को, जो मौजूदा तारीख है, जो मौजूदा ज़माने की तारीख है, उसको पढ़ा जाए। ये तीन चीज़ें जो हैं वो इंसान को आमादा करेंगी कि वो तारीख़ी और दीनी लिहाज से अपने आप को मजबूत करें। चौथा मुकदमा जो इस किताब में मौजूद है वो ये है कि अपनी खुदसाज़ी और मानवियत की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, अपने सेल्फ़ बिल्डिंग, करेक्टर बिल्डिंग की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। पांचवा ये है कि आज़ादाना अंदाज से फ़िक्र करने की सलाहियत का हामिल होना चाहिए इंसान को। छठा नुक्ता यह है कि शुजाअत होनी चाहिए फ़हम में और फ़िरासत में, कि आपका फ़हम सही है, आप सही चीज़ समझ रहे हैं, उसको बयान कर रहे हैं। सातवां नुक्ता यह है कि कुछ रेड लाइंस होती हैं, उनको पहचानना चाहिए। जिस तरह रेड सिग्नल होता है आप रुक जाते हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते जितनी भी जल्दी क्यों ना हो, उसी तरह कुछ रेड लाइंस हैं, सुर्ख लकीरें हैं कि जिनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। ये सात किस्म की है। पहली यह है कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करे हम उसकी मुखालफत करें। दो, तअस्सुब की बुनियाद पर अंजाम दिए जाने अमल से पहलू तो इख्तियार करें, यह हमारे कबीले का, यह हमारी पार्टी का, यह हमारे ख़ानदान का नहीं। तीन, जो इख्तलाफ की बात करे वहदत को तोड़े, इत्तेहाद को सबोताज करे, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये हमारी रेड लाइन है। जो माशरे के नज़्म व ज़ब्त और आराम व सुकून को तहोबाला करे, ये भी रेड लाइन है, हमें इसके ख़िलाफ़ होना चाहिए। और हर वो चीज़ जो दुश्मन की खुशी का सबब बने, हमें उसे इज्तनाब करना चाहिए। दूसरा हिस्सा जो इस किताब का है वो है वो टूल्स, वो महारतें, वो फ़नून के जो तहलील सियासी में काम आती हैं। ये दो किस्म की हैं, या ईजाबी हैं या सलबी हैं। ईजाबी हैं यानी हमें इनको गेन करना है, इनको हासिल करना है, अपने अमल में लेकर आना है, फ़िक्र में, अमल में। दूसरी कस्म की वो हैं सलबी हैं, हमें उनसे इज्तनाब करना है, हमें उनसे बचना है, हमें उनसे दूर रहना है। जो ईजाबी नुकात हैं जिनको हमें हासिल करना है, पहली ये है कि कुल निगरी, मजमूई तौर पर एक चीज़ को देखा जाए, फिर नस्बत को, रेशों को, तनासब को, रिश्तों को देखा जाए। किस चीज़ में? आपकी फ़िक्र में, और आपके ख्याल में, आपके हदफ में और हकीकत में, कि हकीकत क्या है और आपका हदफ क्या है। तीसरा ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी और नतीजे को देखें, इनके दरमियान जो एक रेशो और रिश्ता कायम, उसको देखा जाए। चौथा यह है कि वक्त शनासी होनी चाहिए आप में, कि वक्त के तकाजे क्या हैं। पांचवा यह है कि अपने मुसबत और मनफी नुकात, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को इंसान एक साथ देखे, अलग अलग ना देखे। छः कि जो आपकी निशानी और अलामतें हैं उनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। सात, अल्फाज मानी पर दलालत करने वाले अल्फाज, आप एक फ़िक्र देना चाहते हैं तो उसके लिए एक मुनासिब लफ्ज़, मानूस लफ्ज़ ईजाद करें या लेकर आएं कि जो लोगों के लिए, जिसको समझना आसान हो। आठ, सियासी बाजीगरों और शोबदाबाजों के बातों में और अफकार में तामुल और गौर फिक्र करना। नौ, असली और फ़रई, असली और गैर फरी और गैर यकी गैर असली मसाइल को और फरी मसाइल को जुदा जुदा करना, मखलूत नहीं होने चाहिए, जाबजा नहीं होने चाहिए। सबकी बातें सुनना, उनमें से बेहतर के अमल करना, ये दसवां नुक्ता है। और ग्यारहवां नुक्ता यह है कि दुश्मन की शनाख्त और दुश्मन के मंसूबों की और चालों की शनाख्त इंसान के पास होनी चाहिए। ये मवारिद ईजाबी या ईजाबी नुक्ता। सलबी क्या है? खूब सती निगाह से देखना, हमें ऐसा इसका हामिल नहीं होना चाहिए, हम सती निगाह से नहीं देखें। दो, यानी किसी चीज़ को हकीकत समझ लेना जबकि वो हकीकत ना हो। जिद और हठधर्मी से परहेज करना। तीन, चार, मुगालते से परहेज करना। पाँच, जानिबदारा निगाह रखना और अज़क़ब्ल किसी के बारे में कोई राय कायम कर लेना। छः, किसी चीज़ को बहुत हल्का और आसान समझना। सात, राहत तलब और आसान तलब होना। नौ, असबानियत, गुस्से से परहेज करना। ये दो हिस्से हैं। और तीसरा हिस्सा जिसमें रहबर ने दो अजीम मसाइल को पेश किया है, एक इस्लामी इनकलाब का तजिया है और एक अमेरिका से मुज़ाकरात का, जिसको इन्हीं फ़नून और इन्हीं महारतों की रोशनी में रहबर मोहज़र ने हल किया है। इंशाल्लाह इस किताब का तारुफ जो है और इस किताब का मुताला जो है वो रागोशा साबित होगा। और हमारे दोस्त, हमारे सियासी अफराद, हमारी तनजीमें, हमारी जमातें, इज्तमाही सतह पर काम करने वाले अफराद, मौससात चलाने वाले, इदारात चलाने वाले अफराद, तनजीमें और अहजाब से वाबस्त अफराद, ये उनके लिए एक बेहतरीन किताब है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस किताब के मुताबिक अमल कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।